मेरे अत्यंत प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने अभी जो कुछ नियम बनाए हैं उन पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी सूचना और दो छोटी छोटी खबरें। सूचना यह है कि सन 2023 के जो प्री के एग्जामिनेशन हैं, दो महीने से भी उनमें कल का वक्त रह गया है। फ्रेंड्स, हम लोग हर साल एक आध साल बीच में हम लोगों ने गैप किया था किसी वजह से, खासकर करेंट अफेयर्स को लेकर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो यूट्यूब पर जारी करते हैं। टॉपिक्स के फॉर्मेट में भी होते हैं और वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मेट में। कल AFEIS में इसे अवेलेबल करा दिया गया है। जब आप यूट्यूब पर AFEIS में जाएंगे तो आपको बकायदे ये सुनने को देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, इन्हें मैंने ही तैयार किया है। उसमें टॉपिक्स बताए गए हैं कि इस साल के प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप सुनेंगे तो और डिटेल में उसमें सारी बातें बताई गई हैं, मैं यहाँ उन्हें दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन यदि आप जरा से भी इच्छुक हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ जा सकते हैं और इसे सुन सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपकी तैयारी में जरूर कुछ न कुछ मदद मिलेगी। अब मैं आता हूं दो खबरों पर। दो दिन पहले की खबर है, उस समय मैंने इसे नहीं लिया था, मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा था और खासकर अमूल बनाम नंदिनी को लेकर। अमूल हमारे यहां का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं, गुजरात में है, गुजरात के आणंद में है और हिंदुस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण सहकारी संगठन है और एक तरह से मॉडल है। यह केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया का एक मॉडल है। उनका जो ब्रांड है वो है अमूल, राइट, दूध है, मक्खन है, दही है, ढेर सारी जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं वो अमूल के हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई कि ये जो अमूल है ये अपने ब्रांड को अब कर्नाटक में भी लॉन्च करने जा रहा है, यानी कि कर्नाटक में भी अब अमूल की चीजें बिकेंगी। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही कर्नाटक में इसका जबरदस्त रूप से विरोध होने लगा। विरोध होने के पीछे कारण ये था कि भाई जो अमूल है वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो यहां आ गया तो उनका भी अपना एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर जो दुग्ध उत्पादक किसानों का ही है, जिसका नाम है नंदिनी, है ना, नंदिनी। उन्होंने अपने कोऑपरेटिव का नाम रखा है नंदिनी, वो भी मिल्क प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो उनका ये कहना था कि इसका हमारे नंदिनी पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हमारे जो किसान हैं उनके हित बाधित होंगे क्योंकि अनावश्यक रूप से एक कॉम्पिटिशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसने फिर धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया और आपको मालूम है कि कर्नाटक में चुनाव होने हैं और जहां चुनाव होते हैं वहां ये सारी चीजें बड़ी संवेदनशील हो जाती हैं और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी न किसी बहाने किसी न किसी मुद्दे को लेकर के उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती हैं। चलिए, वो एक अलग विषय है, वो हमारे परीक्षा की तैयारी के पर्व में नहीं आता है। लेकिन इससे एक चीज आपको जो चिंता करने वाली दिखाई दे रही होगी वो ये है कि भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है। ठीक है, हर राज्य में अपनी इंडस्ट्री हो सकती है, किसी राज्य का सरकार का अपना एक जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है, लेकिन क्या उसे अपने प्रोडक्ट को दूसरे राज्य में भेजने के लिए उस राज्य से परमिशन लेनी पड़ेगी या कोई अलग से कानून बनाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? फिर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा, ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं। फिर हमारे नेशन का क्या होगा एक ऐसे दौर में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दुनिया के बाजार के एक होने की बात कर रहे हैं, वहां क्या एक राष्ट्र के जो अलग अलग राज्य हैं वो भी एक नहीं हो सकेंगे? इससे किस तरह का एग्जाम्पल सेट होगा? क्या हर राज्य को अपनी आर्थिक गतिविधियों को अपने ही राज्य तक सीमित रखना पड़ेगा? मतलब इससे कई इस तरह के प्रश्न पैदा होते हैं। चूंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट घटना है तो मेरा पर्पस केवल इस घटना के आधार पर जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसके बारे में बताना था और उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना था। बस मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही था। देखिए, हो सकता है कि आगे इस पर आपको कुछ पढ़ने को, कुछ सुनने को मिले, जब ऐसा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, एक छोटी सी खबर आई है और ये जो खबर आई है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की तरफ से, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं INS, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ समय पहले सरकार का एक जो मंत्रालय है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, उसने एक नियम जारी किया था, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 जारी किया। उसका विरोध इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने किया है और उनका विरोध करने का जो पर्पस है वो ये है कि, इसे ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि सरकार ने ये जो मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसको ये अधिकार दिए हैं कि वो बकायदे किसी भी कंटेंट की जांच कर सकती है। जैसे ये फेक न्यूज पर है बेसिकली, आप देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे खास सोशल मीडिया में कितनी गलत खबरें आती चली जा रही हैं और उसके बड़े विपरीत प्रभाव हो रहे हैं, समाज को उन्हें झेलना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये फेक न्यूज है, झूठी खबरें हैं, तो एक चिंता की बात है कि भाई फिर इन झूठी खबरों को नियंत्रित कैसे किया जाए। तो नियंत्रण करने के लिए सरकार एक नियम लेकर के आई और उसमें इस मंत्रालय को सरकार ने अधिकार दिया कि वो कंटेंट की जांच करे कि भाई ये जो न्यूज है ये झूठी है या सच है, इसके लिए बकायदे एक यूनिट बनाए और फिर अगर वो उसे गलत लगती है, पता लगा कि नहीं ये गलत है, तो उसे हटाने का आदेश दे। ये सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि सरकार, चलिए हम मंत्रालय को छोड़ देते हैं, तो सरकार के पास ये अधिकार अब आ गए हैं कि वो देखे कि कोई खबर सच्ची है या झूठी है और अगर उसे लगता है कि ये खबर झूठी है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो इसमें आपको एक तरीके के सेंसरशिप की बू आती हुई नजर आएगी। इसी को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने महसूस किया है और इसका विरोध किया है। उसका ये कहना है कि खासकर ऐसे में तो सरकार पता नहीं किस आधार पर किसी भी न्यूज को गलत ठहरा ले, और खासकर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो संभावना के बतौर पर दे दी जाती हैं, अनुमान के आधार पर दे दी जाती हैं, तो ऐसी न्यूज़ के बारे में आप क्या करेंगे। सोसाइटी ने यह भी कहा है कि ने अपने पास अधिकार रखे हैं वो बिल्कुल अनियंत्रित हैं, बेलगाम अधिकार हैं, क्योंकि जिसके न्यूज़ को आपने फेक घोषित किया है उसकी सुनवाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप उसे सुने, क्योंकि वो अपील नहीं कर सकता। हाँ, वो अपील करेगा तो आपके पास ही आएगा और आप ही उसकी सुनवाई करेंगे। तो इन्होंने जो शब्द यूज किया कि शिकायतकर्ता ही एक प्रकार से जज है, आपने ही उसे फेक न्यूज ठहराया और आपके पास ही हम आ रहे हैं और आप ही उसके बारे में फैसला दे रहे हैं। तो सोसाइटी का कहना है ये तो प्राकृतिक न्याय के बिल्कुल विरुद्ध है और ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रेस के सेंसरशिप की तरह है। और दोस्तों, उनका जो एप्रिहेंशन है, उनकी जो आशंका है, याद रखिए कि वो गलत नहीं है, वो अपने आप में काफी कुछ सही है, क्योंकि सरकार आगे जाकर के इस तरह के नियमों का उपयोग अपने हित में इस रूप में वो कर सकती है। और आप मान करके चलिए कि जिस भी लोकतांत्रिक देश से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, वहां फिर लोकतंत्र अपनी सही आत्मा के तौर पर जीवित नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे, कई गुना ज्यादा जानते होंगे, और आप लोगों में से बहुत से लोग तो ऑनलाइन गेमिंग खेलते भी होंगे। ऑनलाइन गेमिंग, इसको लेकर के पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा संकट आने लगे थे, लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते थे, यहां तक रिपोर्ट आई कि जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है, ये गेमिंग के चक्कर में वो बकायदे घरों से वो पैसे चुरा लेते हैं, और यहां तक कि जो घरेलू संबंध हैं, पति और पत्नी के संबंध हैं, वे तक खराब होने लगे हैं क्योंकि गेमिंग में वो पैसा उड़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग ने एक प्रकार से कहीं ना कहीं ऑनलाइन गैम्बलिंग का रूप ले लिया, और खासकर तमिलनाडु सरकार ने इसको लेकर के बहुत ही जबरदस्त अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो ऑनलाइन सट्टेबाजी है बेसिकली, और इसने किशोर और वयस्क की पूरी कमाई और बचत को बर्बाद कर दिया है। तमिलनाडु ने यह आवाज उठाई थी। डेफिनेटली ये संकट था, अखबारों में भी इसको लेकर के खबरें आती थी, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः केंद्र सरकार ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की। और उस अधिसूचना में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, वो ये कि उसमें कर दिया कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग के जो वेबसाइट हैं, जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हें बकायदे अब इसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से अनुमति लेनी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और सभी ऑनलाइन गेम को अपनी साइट पर यह बताना होगा कि उसकी साइट को इससे स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, यानी कि सरकार ने ये कोशिश की है कि वो ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण लगा सके। अब यहां आपको जो थोड़ी सी बात समझनी है वो ये समझनी है, क्योंकि इसको लेकर के अभी बहुत अस्पष्टता लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग, इसका जो अंतर है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने बकायदे इसमें ये किया है, या कह लीजिए कि इसके अधिसूचना में ये है कि जैसे फैंटेसी होती है, जो काल्पनिक खेल होते हैं वो बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं, बहुत से स्किल आधारित मनी गेमिंग होती है जिससे बच्चों में कौशल का विकास होता है, उनकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, तार्किक शक्ति बढ़ती है, सोचने विचारने की शक्ति बढ़ती है, पावर ऑफ मैथ्स बढ़ता है, इस तरह के भी गेम्स हैं। तो सरकार का कहना है कि नहीं, ऐसे गेम पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो फैंटेसी को बढ़ाते हैं या फैंटेसी पर आधारित है और बकायदे स्किल पर आधारित है, ऐसी मनी गेमिंग चलेगी। लेकिन खासकर जो गेमिंग या जो गेम रियल मनी पर आधारित हैं और बकायदे सट्टा को प्रोत्साहन देते हैं, उन पर रोक है, उन पर रोक है और उनके विज्ञापन पर भी रोक है। तो अब जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि इसका निर्धारण किया कैसे जाएगा। सरकार ने विज्ञापन पर रोक की बात कही है और जो विज्ञापन की जो परिभाषा है उससे बताने वाले जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मानक जो उसके स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, वो संस्था है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। आप यूं कह लीजिए कि उस पर सरकार का कोई सीधे सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, वो तय करती है कि कैसे विज्ञापन आने चाहिए। अब मजेदार बात यह है कि बकायदे ये नियम तो बनाए हैं केंद्र सरकार ने, और राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो ये फैसला करें कि किस गेम को वे फैंटेसी मानते हैं, किस गेम को वो स्किल पर आधारित मानते हैं और किस गेम को वो गैम्बलिंग मानते हैं। यानी कि राज्य इसके बारे में फैसला करेंगे और राज्य सब अलग अलग तरीके से फैसला करेंगे। इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो रमी है उसे फैंटेसी गेम मानकर स्किल गेम कहा, यानी कि ये जुआ नहीं है, सट्टेबाजी नहीं है, ये स्किल गेम है। और मजेदार बात है कि तमिलनाडु सरकार ने उसी को ही गैम्बलिंग मानते हुए उस पर रोक लगा दी। तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कई तरह के संकट इसके बारे में उठकर खड़े होंगे। लेकिन दोस्तों चलिए, वो बात बाद की है। जब कोई भी नियम बनाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसका निराकरण फिर बाद में आवश्यकता अनुसार किया जाता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम सरकार ने इस बारे में कोई तो शुरुआत की। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों कल गस्टेड हॉलीडे है, इसके बाद सैटरडे संडे की छुट्टी है, 3 दिन के बाद हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अब इजाजत दें और यहीं अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।